शरणागत पाप पर्वतम गणित्वा न तदीय सद्गुणम अनुमाप्य तुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा सुखद मूर्ति छो श्री हरि जोय उपजे छे वहा निरखी नैना भरी तमने हो तो थई गई रे निहार ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणायनु अक्षरधामाधिपतये कोटि कोटि मुक्त पतये श्री राजा अधिराजाय नमो नमः परात्पराय सर्वाधाराय सर्वनियामकाय सर्वप्रकाशकाय सर्वकर्म फल प्रदात्रे सर्वहितकर्त्रे सर्वांतरियामिने सर्वावतारिणे सर्वोपरि श्री स्वामी नारायणाय नमो ज्ञानानंद एक स्वरूप सर्व कारण कारण परम ध्येय मूर्ति श्री हरि कृष्ण महाराजाय नमो सदानंदायिने आनंद घन मूर्ते श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमो कठिन तप कारिणे एकाकी वनवासी ने कंद फूल फलासी ने अति कृष तनवे महातपस्वी ने महातेजस्वी ने बाल मुने श्री नीलकंठ वर्णि राजा नमो साधु सेवकाय साधु पूजकाय साधु संरक्षकाय साधु पोषकाय साधु हृदयाय साधु प्रियाय साधु जन मध्यवासाय लजपुरवासिने सरजुदासाय नमो नमः बाल रूपाय मंद मुख हासाय अति कोमलांगाय माँ भक्त्यंग गताय श्री घनश्याम महाराजाय नमो नमः आदि गुरुवे सद्गुरु वर्याय महासमर्थाय हरि स्वरूप निमग्नाय उभय देशाचार्य मध्यस्थिने श्री गोपालानंद मुने नमो नमः हरि गुरु तुल्याय श्री मुक्तानंद मुने सर्वोपरि निष्ठावते श्री गुणातीतानंद स्वामी ने पंडित प्रवर नित्यानंद मुने कविवर ब्रह्मानंद स्वामी विद्वदपि दास मूर्ति सुखानंद मुने त्याग वैराग्य संपन्न श्री कृपानंद स्वामी ने नमो नमः वचन सिद्ध श्री भाई रामदास स्वामी ने सद्गुरु श्री निष्कुलानंद मुनिये प्रेमानंद मुनये वचन सिद्ध श्री भाई आत्मानंद स्वामी ने नमो नमः सिद्ध मूर्ति शतानंद स्वामी ने स्वरूपानंद स्वामी ने परम स्नेही सच्चिदानंद स्वामी ने तस्य वक्षिद्धानंद मुनये विद्वद्वर्य योगानंद स्वामी ने समाधि निष्ठ व्यापकानंद स्वामी ने बुद्धिमते चैतन्यानंद स्वामी ने व्यवहार कुशल वयो वृद्ध श्री आनंदानंद मुनये नमो नमः इत्यादि सर्वनंद सद्यो नमो नमः मम गुरु श्री राधारमण स्वामी ने नमो नमः सर्वधामस्तु सर्वमुक्तेभ्यः प्रकट सर्वसाधु हरिभक्तेभ्यो नमो नमः वाला भक्तो श्री स्वामीनारायण मंदिर वडोदरा कालीबाग द्वारा आयोजित त्रिदिनात्मक सद्गुरु श्री आनंदानंद स्वामी का आख्यान आज से शुरू होता है। सम्वत 2070 आषाढ़वद दशमी थी द्वादशी सुधी सोमवार थी बुधवार सुधी दिनांक 21 से 23 जुलाई 14. આજ 2070 ની સાલ અષાઢ વર્ષ દશમી છે વાલા ભક્તો, સોમવાર જેવો પવિત્ર વાર, 21 જુલાઈ 2014. એમાં આજે સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીની અક્ષરવાસ તિથિ છે. 1886માં ગઢપુરમાં સ્વામી આજે દેહ છોડીને ધામમાં ગયા અને આજ વચનામૃત લેખન સમાપ્ત થયું. તે દિવસે આપણો આ ત્રિદિનાત્મક આનંદાનંદ સ્વામીના આખ્યાનનો કાર્યક્રમ શરૂ થાય છે. કાલે રવિસભામાં પણ આપણે આનંદાનંદ સ્વામીનું આખ્યાન સાંભળ્યું. એટલી બધી અજોડ વાતો છે આમાં. આપણો આનંદ આત્માથી આમ લૂંટીએ સંતનો, ભક્તોનો, કથાનો અદ્ભુત આ કથા. યે સબ પ્રભુ કૃપા સે હો રહા. પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હૈ આખ્યાન, જિસમે આપકા હમકો હોતા રહેગા ધ્યાન, હોતા રહેગા ધ્યાન. પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હે આખ્યાન,
પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હે આખ્યાન,
હે પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હે આખ્યાન,
પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હે આખ્યાન.
જિસમેં આપકા હમકો,
મેં આપકા હમકો
હોતા રહેગા ધ્યાન,
હોતા રહેગા ધ્યાન.
હાજીર હા હોતા રહેગા ધ્યાન,
હોતા રહેગા ધ્યાન.
ભગવાનની કથા કરીએ કે ભગવાનના સંતના ચરિત્ર ગાઈએ, એમાં સહજ ભગવાનનું ધ્યાન દે, લક્ષ્ય રાખી. આનંદાનંદ સ્વામી કી સબ જીવની મિલ ગઈ,
આનંદાનંદ સ્વામી કી સબ જીવની મિલ ગઈ.
બડી મુશ્કેલી સે મિલી મગર મિલ ગઈ. આનંદાનંદ સ્વામી નું બધું જીવન ચરિત્ર આઠ આવી ગયું. આનંદાનંદ સ્વામી કી સબ જીવની મિલ ગઈ,
આનંદાનંદ સ્વામી કી સબ જીવની મિલ ગઈ.
વો તો હમ પર આપકી,
વો તો હમ પર આપકી,
હે પ્રભુ વો તો હમ પર આપકી,
વો તો હમ પર આપકી.
બડી કૃપા હી ભઈ,
બડી કૃપા હી ભઈ,
પ્રભુ આપકી કૃપા સે ગાતે હે આખ્યાન,
પ્રભુ આપકી કૃપા,
હે મેરે નાથ
ગાતે હે આખ્યાન.
ભરતપુર કે રાજવંશી કાકાજી રઘુરાજ,
ભરતપુર કે
उन्होंने बहुत मदद की, ये काका जी उन्होंने बहुत मदद की, जिससे हुआ यह काज,
जिससे हुआ यह काज.
उन्होंने बहुत मदद की,
जिससे हुआ यह काज,
जिससे हुआ यह काज,
जिससे हुआ यह काज.
वो सब कृपा आपकी जानते हैं महाराज,
वो सब कृपा आपकी
हम जानते हैं महाराज, वो सब कृपा आपकी हम जानते हैं महाराज,
वो सब कृपा आपकी हम जानते हैं महाराज.
जिससे यह आख्यान को,
जिससे यह आख्यान को
हम गा रहे हैं आज,
हम गा रहे हैं आज,
अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो कैसे हो सकता मेरे भाई। ये रघुराज सिंह है, भरतवंशीय राज परिवार के सदस्य, जो आनंदानंद स्वामी के भातृज के वंशज है। उन्होंने हम पर एक लेटर लिखा है, वो ईश्वरचंद्र दास जी स्वामी इधर आकर खड़ा होकर पढ़ेगा। हम सब लोग बड़े प्यार से सुनेंगे, पढ़िए जी।
भरतपुर पैलेस रघुनाथ निवास सिविल लाइंस भरतपुर 321001 राजस्थान, डेट 28 जून 2014। सेवा में श्रद्धेय श्री सद्गुरु स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी महाराज, कुंडल धाम गुजरात। स्वामीनारायण संप्रदायन के गुजरात स्थित प्रसिद्ध वड़ताल धाम के कुंडल धाम वाले संतवर्य पूज्य स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी महाराज, आप श्री ने हमारे भरतपुर वंशीय राज परिवार उत्पन्न रावराज नवल सिंह जी के इतिहास का संशोधन किया है, वह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव की बात है। अगस्त 2013 में आप श्री ने अपने संतों को हमारी मुलाकात के लिए भेजा था। उस वक्त हुई और तत्पश्चात कई बार हुई बातों से हमें ऐसा जानने का मिला है कि आप श्री और आपके संतों ने हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत ही यथार्थता पूर्वक शोध किया है। हमारे कुल के मुकुटमणि समान महाराज सूरजमल के 5 सूरवीर पुत्र थे। उनमें से तृतीय पुत्र रावराज नवल सिंह जी बाल महाराजा केसरी सिंह के राज्य कार्य संभालने के लिए नायब रिजेंट के तौर पर नियुक्त हुए थे। उसी दरमियान सत्ता प्राप्ति की लालसा से घरेलू एवं पराई अनेक राज की धमाल एवं युक्ति प्रयुक्ति और छोटे बड़े युद्ध हुए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में भी तकरीबन 7-8 वर्ष तक रावराज नवल सिंह जी ने राज्य कार्य संभाला और राज्य की यथावत स्थिति बरकरार रखी थी। क्योंकि नवल सिंह एक धार्मिक प्रवृत्ति एवं वैराग्य जीवन बिताने में रुचि रखते थे, अतः युद्ध व राजनीति त्याग कर और अपने छोटे भाई रणजीत सिंह जी को भरतपुर का राज्य सौंप कर वे परमात्मा की आराधना के लिए वृंदावन गए। इस दौरान महाराजा केसरी सिंह को चेचक से मृत्यु हो चुकी थी। भरतपुर राज परिवार की धार्मिक विषयों के प्रति सदैव ही झुकाव रहा है और आज भी ब्रजधाम के गिरिराज महाराज गोवर्धन के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। वहां से अयोध्या जाकर राम गलोला जी सरकार के शिष्य बने और लक्ष्मणदास नाम धारण करके उस आश्रम में रहे। बाद में गुरु वैकुंठवासी होने के पश्चात आश्रम के एवं अवध के प्रतिष्ठित लोगों ने उनको राम गलोला आश्रम के मठाधीश बनाए। तत्पश्चात परमेश्वर की अपरोक्ष अनुभूति की जंखना से वहां श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उस समय गुजरात से द्वारका की यात्रा करके आए हुए सन्यासी के मुख से जीवन मुक्त सद्गुरु श्री रामानंद स्वामी जी के बारे में कुछ बातें सुनने में आई। उससे उनके दिल में प्रकाश हुआ और प्रेरणा हुई। अतः गुजरात में जाकर श्री स्वामीनारायण भगवान के गुरुवर्य श्री रामानंद जी स्वामी के पास परमहंस की दीक्षा लेकर श्री आनंदानंद स्वामी नामक संत बने और स्वामीनारायण संप्रदाय में स्वयं भगवान स्वामीनारायण के साथ उनकी प्रथम पंक्ति के संत के तौर पर गणना रही। उन्होंने अनेक विध ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वह बात हमारे भरतपुर वंशी राज परिवार के लिए अतीव गौरवपूर्ण है। आप श्री के संशोधन कार्य से रावराज नवल सिंह जी का अर्थात सदगुरु श्री आनंदानंद स्वामी का अज्ञात इतिहास निश्चित रूप से पूर्ण हुआ, अतः हमारे दिल में अत्यंत खुशी हुई है, अत्यंत खुशी हुई है। हम जानते हैं कि तदनुसार आप श्री ने तथा आपके संतों ने रावराज नवल सिंह जी के विषय में किया हुआ शोध संपूर्ण सत्य हकीकत प्रतीत होता है। आप जब उनकी सब बातें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें तो उनकी प्रति हमें भी अवश्य भेजिएगा, जिससे हमको बड़ी खुशी होगी। अब स्वामीनारायण संप्रदाय और भरतपुर के राजवंशियों का स्नेह सेतु विशेष तर दृढ़ बनता रहे, ऐसी परमात्मा के चरणों में शुभकामनाएं। शुभेच्छु राव राजा रघुराज सिंह। दिनांक 28 जून 2014।
सब प्यारे भक्त, आपको भी यह सुनकर खुशी अवश्य हुई होगी, क्योंकि जो इतिहास सालों से दबा हुआ पड़ा था, सारे संप्रदाय में कोई नहीं जानते थे कि आनंदानंद स्वामी पूर्वाश्रम में कितने बड़े महान पुरुष थे। अब संप्रदाय के सभी आश्रितगण ये बात जानेंगे और बड़ी खुशी से नाच उठेंगे। आइए हम आगे सुनते हैं सदगुरु श्री आनंदानंद स्वामी के पूर्वाश्रम के पिता श्री सूरजमल की कुछ बातें, उर्फ सुजान सिंह की कुछ बातें, कुछ जीवनी। अपमान का बदला सम्मान से दिया सूरज सिंह ने, यह कथा हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। पानीपत का तीसरा बहुत बड़ा युद्ध की बात। भले भलाई करते हैं बुरे सदा बुराई, भले भलाई करते हैं, भले लोगों का यही काम है भलाई करना और बुरे लोगों का काम है बुराई करना। भले भलाई करते हैं और बुरे सदा बुराई, धन्य भरतपुर राजवंशी करते रहे हैं भलाई। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सद्बुद्धि मिले सदैव, दुर्बुद्धि जिसमें आई है उस पर रूठे दे। जिसको दुर्बुद्धि प्राप्त हुई है समझो उस पर देव रूठ गए, और जिन लोगों में सद्बुद्धि है तो हमें समझना चाहिए उन पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी, वरना सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है, जहां तहां से नहीं मिलती। सूरजमल बड़े सद्बुद्धि वाले पुरुष थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, इसमें अफगानिस्तान के अब्जा अली और मराठाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। दिनांक 14 जनवरी 1761 में यह महायुद्ध खेला गया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। इतिहास में बहुत बड़ी बातें हैं। इस युद्ध में मराठा सरदार पेशवा भाऊजी ने महाराजा सूरजमल को धर्म के नाम पर सहायता करने के लिए एक पत्र लिखा था, क्योंकि सामने सब मुसलमान थे, इसलिए सब हिंदू राजाओं इकट्ठा होकर यदि युद्ध करे तो अवश्य फायदा हो सकता था, युद्ध जीत सकते थे। पत्र जब भाऊजी का आया, सूरजमल ऐसे बड़े सोच वाले आदमी थे, वो जब खरा समय होना तब पीछे हटे ऐसा नहीं था, मर जाए मगर वो धर्म के लिए पग आगे रखने वाले आदमी थे पत्र पढ़कर हिंदू धर्म के रक्षण के लिए महाराजा सूरजमल शीघ्र ही 20,000 जाट सैनिक के साथ उनकी मदद में चल पड़े। 20,000 सैनिकों को लेकर पानीपत के युद्ध में सूरजमल निकल पड़े। मराठा कमांडो के साथ वहां जाकर युद्ध के बारे में कुछ विचार विमर्श किया। उसमें जब सुजान सिंह को ये बात जानने में आई कि बहुधा मराठा सरदार अपनी पत्नी परिवार बाल बच्चों को साथ लेकर युद्ध करने को जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। युद्ध करने को निकले हैं मगर पत्नी पुत्र सभी को साथ लेकर, वो तो ठीक नहीं। ये हम हिरने फिरने के लिए नहीं निकले हैं, मौत के साथ खेल खेलने के लिए निकले हैं। ये स्त्रियां और ये बच्चों साथ में क्यों? उन्हें वो बात ठीक न लगी क्योंकि सूरजमल बड़े बुद्धिशाली थे और नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सोचा यदि ऐसे होगा तो निश्चित हमारी हार होगी और बहुत बड़ा विनाश होगा। हिंदू धर्म के नाते मुझे नैतिकता से सच्ची बात समझानी पड़ेगी, सलाह देनी पड़ेगी और देनी ही चाहिए। ऐसा जब समय हो तब मुंह बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसे समय में नहीं बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि यदि हम थोड़ा बोले होता ना तो ऐसा नहीं होता। बाद में महाराजा सूरजमल ने पेशवा सरकार भाऊजी को और सभी मराठी योद्धा को श्रेष्ठ सलाह दी, कहा हम इस लड़ाई किसी छोटे सरदार के साथ लड़ने नहीं जा रहे हैं भाऊजी, क्या कहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में सभी मुसलमान हैं, हम जानते हैं, जानते हैं तो सुनिए, यह अति भयंकर युद्ध होगा, सामान्य नहीं। इसलिए अभी साथ रही हुई स्त्रियों को कोई सुरक्षित किले में भेज देना चाहिए, हमारे साथ ये सब नहीं रखना चाहिए। यदि आप कहो तो मेरे भरतपुर में भी उनकी सुविधा हो सकती है, यदि आपका दिल माने तो, मेरा आग्रह नहीं है। मेरे भरतपुर में तोप से सुसज्ज बड़ी सेना है और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है, चाहे तो वहां सब स्त्रियों को और बच्चों को रख सकते हो, जैसा आप कहे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई दूसरा स्थान न हो तो मेरे राज्य के अभेद्य किले में आपके सब परिवार की सुरक्षा होगी। मेरे सैनिकों वहां रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने देगा, उनके साथ सभी स्त्रियों और बाल बच्चों को आप रख दो। अगर स्त्रियां और बच्चे साथ होंगे तो शत्रु सेना को नाश करने में हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी बाबूजी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बात सुनकर, ये तो बहुत बड़ी अच्छी सलाह है, ऐसा जानकर इंदौर नरेश होलकर ने कहा, ठीक है सुजान सिंह, आपका सुझाव ठीक है। अन्य सभी राजागण ने भी कहा, आपकी बात सच्ची है, आप जो कह रहे हैं वो बुद्धिमत्ता से कह रहे हो। सभी ने समर्थन किया मगर भाऊजी ने नहीं। सज्जन मानव देते हैं सदा सच्ची सलाह, सज्जन मानव देते हैं सदा सच्ची सलाह, वो प्राणी नहीं मानते जिनकी बुरी चाह, जिसके भीतर में अच्छी भावना नहीं है वो सच्चे आदमी ने दी हुई सलाह कभी नहीं मानते। सलाह मानी तो नहीं मगर उल्टा किया। क्या किया? जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, इसी न्याय से पेशवा भाऊजी कुछ भी समझे नहीं। धन्य सुजान सिंह जी को सच्ची दी थी राई, भाऊ जी ने मानी नहीं, दिल में रखी बुराई, उल्टा बेसमझी में महाराजा सूरजमल का अपमान किया। तुम क्या समझते हो, हम मराठा है, हम मराठा है। अभिमानी कोई दवा खरी भाई, खाएक सोड़ा गया मशरी नीचे, हम वो है, हम वो है। मैं राक्षस राज रावण हूं, चेनो का पत्तो इन हेड क्यों गो तू जड़े हमसे। मैं मथुरा नरेश कंस, त्रिलोक में मेरा राज्य है। लिया गोतो जो क्या जड़े तो दाखलू ही जड़े तो इन राज्य नु आ धरती ऊपर कहीं मरी गया। आपने डाया थी जाए तो हार वो बधु पानी पड़ू मूकिए भगवान ने पगे लागिए भजन करिए हवनी आरे डाया थी निर्माणी थी जीवीए लीला ले। हाँ कम मराठा है सूरजमाल, तुम्हारे जैसे जाट राजपूत नहीं। चलो उठो यहां से, हमको सलाह देने आए हैं कि हमको युद्ध में मदद करने आए हैं, क्या करने आए, बड़ा अपमान किया। सूरजमल निकल कर अपनी छावनी में गए। बाद में इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि शायद हम लोगों ने उनका अपमान किया है, इसलिए वो कहीं मुसलमान की तरफेण में तो नहीं चले जाएंगे, पकड़ लो उनको। पकड़ लेने को सोचा सूरजमल को, देखा हिंदू के नाते जो 20,000 सेना को लेकर मदद में आए थे उनको ही पकड़ लेने का सोचा। जब मौत हमारे ऊपर घूमने लगती है ना तब बुद्धि काम नहीं करती, जब विनाश ही होने का था दिमाग अलग रीत से चलने लगा। लेकिन वह बात इंदौर नरेश मल्हार राव होलकर ने सुजान सिंह को बता दी, सुजान सिंह यहां से जल्दी निकल जाइए, तुम्हारी भलाई की बात है, ये मराठा लोग कुछ अलग बात सोच रहे हैं, आपको गिरफ्तार करने की बात सोच रहे हैं। ये समाचार मिलते ही सूरजमल वहां से अपनी सेना को लेकर भरतपुर की ओर निकल पड़े। 20,000 जाट सैनिक, बड़े योद्धे लोग थे वो, यदि मराठा के साथ होते ना तो मुसलमान कभी जीत नहीं सकते, मगर मौत ही इसके भाग्य में लिखी होगी, भगा दिया सूरजमल को। महाराजा सूरजमल की सुनहरी नसीहत न मानने का यह नतीजा आया कि मराठाओं का घोर पराजय हुआ। बहुत बड़ा युद्ध था, अभी हारी होनेरी सलाह नहीं मानवानु ये फल निकलू, ये परिणाम आयु के मराठाओं बहु मोटो पराजय थियो। तो ये युद्ध में सच्चे का संग छोड़ दिया, सच्चे का संग छोड़ दिया जिससे हुआ था नाश, सच्चे का संग छोड़ दिया जिससे हुआ था नाश, पानीपत के युद्ध में बड़ा हुआ था विनाश, इतिहास गवाही है। युद्ध में जो बचे थे घायल हुए थे वे जैसे तैसे वहां से भागे। इस युद्ध में भाऊजी पेशवा मारा गया और कहीं बड़े बड़े योद्धे लोग मारे गए, बचे हुए लोग भाग निकल गए, वो सब भरतपुर की ओर चल पड़े। चलते चलते थके वो भरतपुर पहुंचे। उस समय हिंदू धर्म के नाते सूरजमल ने पिछली सभी बातों को भुलाकर मेहमान की तरह उनकी आगता स्वागता की, बुराई पर भलाई की, स्वामी आनंदानंद जी के पूर्वाश्रम के पिताश्री आगता स्वागता के मेहमान की भांति ब्राह्मण सैनिकों को दूध और पेड़े इत्यादि जो चाहिए था वह सब दिया। मराठे लोग ब्राह्मण दूसरों का वो खाते नहीं, इसलिए फलाहार दिया, पेड़ा बर्फी वगैरह वगैरह। घायल सैनिकों को भी सभी प्रकार की सेवा शुश्रूषा की। महारानी किशोरी देवी ने भी उनकी सेवा में कोई खामी न छोड़ी, पूरी तरह से सेवा की। महाराजा ने अपनी सब प्रजा को भी फरमान किया, सुनिए कोई दुखी सैनिक यहां तक पहुंचे तो हो सके इतनी सब मदद करना, मेरे नगरवासी जनों आपसे जितनी हो सके। उस समय मराठा सैनिकों की सेवा शुश्रूषा में उन्होंने 10,00,000 रुपये का खर्च किया था। भरतपुर राज्य के चौपड़े में यह बात लिखी है, 10,00,000 रुपये का। दिमाग काम नहीं करेगा। और सुनिए, इस युद्ध में बाजीराव पेशवा भी था, जो भाऊ जी के बाद में आने वाला पेशवा सरकार, उनका एक बेटा था, वो उनकी मुसलमान स्त्री से पैदा हुआ था। इसमें थोड़ा ऐसा भी बहुत सुनने में आता है, ये लोग मुसलमान की स्त्री के साथ शादी करते थे तो वो मुसलमान हिंदू मराठा स्त्री और राजपूत स्त्री के साथ शादी करते थे, ऐसा सब चलता था। 700 साल हमारे भारत देश में मुसलमान का शासन चला। बहुत युद्ध हुआ था इस काल में। ये बाजीराव पेशवा का पुत्र का नाम था जंग बहादुर। वो जंग बहादुर भी इस युद्ध में घायल हुआ था मुसलमान के साथ लड़ते। वो भी भरतपुर में आए, उसके लिए बहुत उपचार किए गए भरतपुर में महाराजा सुजान सिंह द्वारा, फिर भी वह जीवित न रहा, भरतपुर में ही मर गए। तब उसकी याद में सूरजमल ने उसको जहां दफनाया था वहां कब्र बनवाई और उसके नाम से धर्मशाला शुरू कराई। देखो उदारता और विशालता यहां दिखाई देगी। सुजान सिंह की उदारता मुख से कही न जाए, सुजान सिंह की उदारता मुख से कही न जाए, बुरा चाहने वालों की दिल से ही की भलाई। हर इंसान नहीं कर सकते, बुरा चाहने वालों की दिल से ही की भलाई। यदि भलाई करनी पड़ती है तो ऊपर ऊपर से करते हैं लोग, मगर सुजान सिंह ने बुरा चाहने वालों की दिल से ही भलाई की थी। 10,000 रुपये के खर्च कर डाला था। भाऊजी की पत्नी पार्वतीबाई भी बड़ी मुश्किलें झेल कर भरतपुर पहुंच गई थी। भाऊजी तो मर गए, जो स्त्री को साथ लेकर गए थे वो स्त्री भटकती भटकती भरतपुर आई। सुजान सिंह की बात मानी नहीं थी तो बड़े हैरान हुए। जब वो भरतपुर आई, महाराजा ने उन सब का राजोचित सम्मान किया, राजोचित, और योग्य प्रबंध किया। फिर पार्वतीबाई तथा दूसरे सरदारों को 1,00,000 रुपये देकर अपनी अधिरक्षता के तले अपने स्थान तक भिजवा दिया। बड़े बड़े जो थे ना, उनको खर्च के लिए 1,00,000 रुपये दिए गए, क्योंकि युद्ध में तो बहुत बहुत सब कुछ लूटा जाता है, फना हो जाता है, कुछ नहीं रह पाता। तब ऐसा कोई सहाय करने वाला मिल जाए तभी हम जी सकते हैं। अन्य सभी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को महारानी किशोरी ने 5,000 रुपये दिए और वस्त्र वगैरह देकर विदा किया। अपना अपमान भूल के दूजों की करना सेव, अपना अपमान भूल के दूजों की करना सेव, ऐसा जो कोई कर सके समझो उनको देव। ऐसा यदि कोई कर सके तो समझो उनको देव, मनुष्य से नहीं होता। बाद में उनके सरदार नाना फडणवीस पेशवा के मुख्य प्रधान, प्रधान को यहां पर सरदार नाम से लिखे जाते हैं, नाना फडणवीस इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। मराठा सरकार के वो बड़े सरदार थे फडणवीस। फडणवीस ने सूरजमल का यह सब व्यवहार देखकर बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा कि भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने हमें आराम तथा सुख सुविधा देने में कोई कसर नहीं रखी। 15 से 20 दिन तक हम यहां भरतपुर में रहे। बाजीराव जी क्या कहूं, उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान किया है। और हाथ जोड़कर जो विनय कहा है वो विनय कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। भरतपुर नरेश सुजान सिंह ऐसे बोलते थे, मैं तुम्हारे ही घर का हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं मानो। ऐसे शिष्टाचार के अन्य शब्द भी कहे। उन्होंने हमें ग्वालियर तक बड़ी हिफाजत के साथ पहुंचा दिया है। अफसोस है कि उनके जैसे दरियाव दिल इंसान बहुत थोड़े होते, और ऐसे इंसान के साथ मित्रता करने वाले तो इनसे भी थोड़े होते। कहने का तात्पर्य फडणवीस का यही दिखाई देता है कि अफसोस की बात है, ऐसे दरियाव दिल के आदमी के साथ हम लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी जो सलाह थी वो हमने उड़ा दी, मानी नहीं। यह पत्र जब पेशवा सरकार बाजीराव ने पढ़ा, बड़ी दिल में खुशी हुई। सूरजमल के प्रति बड़े प्रसन्न हो, दुश्मनों का भी दिल पिघाल दे ऐसी केवल धर्म के नाते सरलता रखना, यह गुण सूरजमल में था। ऐसी सरलता रखी बड़ी बात है। ऐसे गुण हरि कृपा बिन मिलत नहीं को काल,
ऐसे गुण हरि कृपा बिन मिलत नहीं को काल,
ऐसे गुण हरि कृपा बिन मिलत नहीं को काल,
ऐसे गुण हरि कृपा बिन मिलत नहीं को काल।
प्रभु कृपा जब करते हैं,
प्रभु कृपा जब करते हैं,
देते हैं दिल विशाल,
देते हैं दिल विशाल,
ओ हमको देते हैं दिल विशाल। प्रभु जब कृपा करते हैं तब विशाल रहने के लिए मकान देते हैं, ऐसा मत समझो। प्रभु जब कृपा करते हैं ना, तब मकान यदि छोटा हो मत घबराओ, जो दे दिया प्रभु ने विशाल दे। अपनी दिल की विशालता में हम सबको समा सकते हैं। सुनिए सूरजमल की दूसरी बात, साधु संतों के प्रति आदर भाव और विशालता वो सदा रखते थे। गोकुल वृंदावन में मानसी गंगा पर यमुना के किनारे हर दिवाली के पर्व पर महाराजा सूरजमल दीपदान करते थे। दीपदान उस समय ब्रह्म भोजन करवाते और ब्राह्मणों को, गरीबों को तथा साधु संतों को मुंह मांगे दान देते थे। एक बार ऐसा हुआ, महाराजा सूरजमल के खजाने को नंगे खाकी बाबाओं ने लूटा, जोमा गया इन लोगों को चीपी हाथ में रखकर। भरतपुर नरेश का खजाना लूटा, सुजान सिंह को हंसी आ गई, ये साधु महात्मा को हम क्या कहे, वो भी लूट चलाते हैं क्या। वह चाहते तो उनको थोड़ी ही देर में नाश कर सकते थे, हाँ, परंतु उनके गुरु संत प्रीतम दास ने तथा उनके पिताजी ने कहीं बार कहा था कि बेटा
कभी भी संतों पर हथियार मत उठाना, कभी भी नहीं। साधु संत जैसे राजी रहे वैसे ही करना। इसलिए महाराजा ने उन तमाम नंगे साधुओं को अपने राज्य में बुलाया, किसी को भेजा, बुला लाओ इन सब बापुओं को। ऐसा काम क्यों किया? कपड़े तो पहनते नहीं, तो खजाना क्यों लूटा? आपको तो बेटी बेटा है नहीं, शादी की किसी की करने की नहीं है, लड्डू तो खाने का मिलता ही है, बुला लाओ बुला लाओ। सब महात्मा आए, तब सुजान सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए महाराजो, खजाना क्यों लूटा? क्या कारण था? तब खाकी बावे लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, सुन के आप लोगों को हंसी आएगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे राज्य में हमारा मंदिर करो, हमको महंत करके उसमें रखो और हमारी आजीविका वहां पर होने चाहिए, उनकी व्यवस्था करो, तो हम नहीं लूटेंगे वरना खजाना लूटेंगे। ले बोलो ना? बिना विवेक भेक सब दुखिया। तब महाराजा सूरजमल ने उनकी सभी बातों को मान्य रखा, कोई बात नहीं, बोलो ना, मंदिर चाहिए ना, मंदिर बनवा दूंगा, पैसे की मेरे राज्य में कोई कमी नहीं, 1, 2, 3 जितना चाहिए इतना बना दू। अरे आपको महंत करके बिठा दू, फिर कोई बात नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। उनके कहने के अनुसार रामानंदीय तथा वेंकटेश्वर की परंपरा के लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना की। हे लक्ष्मण जी का मंदिर है वहां का, और उसकी आजीविका का भी प्रबंध करवा दिया। ऊपर लिखा है ना, लक्ष्मण मंदिर वेंकटेश्वर। सूरजमल कृष्ण उपासक थे और ये खाकी बाबा रामानंदीय, लेकिन बड़े विशाल दिल वाले थे, ऐसी कोई दीवार नहीं रखते थे दिल में। इस तरह उन्होंने अपने गुरुजनों के वचनों का अनुसंधान रखकर धर्म के नाम पर राम श्याम के बीच का जो भेद था उसको लोक हृदय में से भुला दिया, और स्वयं कृष्ण उपासक होते हुए भी रामानंदी संतों का सम्मान करके धर्म के नाम पर होने वाले आंतरिक तकरार को मिटाई, मंदिर बनवा दिया। ऐसे अनेक सद्गुणों के कारण सभी लोगों ने उनको हिंदू धर्म रक्षक युग पुरुष कहकर बिरदाया था। वो इनकी फोटो है ना, हिंदू धर्म रक्षक लिखा है ऊपर, युग पुरुष महाराजा सूरजमल, वहां के राज्य में ये सब फोटो है, दिखाई देते हैं, वो लिखा है, वो पढ़ सकते हो, लिख्यू जाए वाशिए को छो साली, हिंदी हमको समझती नहीं, हमारा बाबा लोग ऐसे बात करते। अब नवल सिंह की शादी होती है, विवाह। जब सन 1762 आई, उसी वक्त सूरजमल ने हरसूरगढ़ के किले पर चढ़ाई की। लड़ाई के बिना तो कोई साल करीबन खाली नहीं जाती, युद्ध तो करना ही चाहिए राजा महाराजाओं को, समृद्धि बहुत होती है राजा महाराजाओं को, लेकिन भोगने का समय नहीं, समय तो सब लड़ाई झगड़े में तकरार करने में वैसे ही बीत जाता। हरसूरगढ़ के किले पर चढ़ाई की थी, तब उस किले का द्वार उनके हाथी से टूटा नहीं, हाथी ने बहुत जोर लगाया, 200 हाथी रखते थे, फिर भी किला का द्वार नहीं टूटा हाथी से। उसे देखकर कोटमणि के सरदार सीताराम कूद पड़े कुहाड़ा लेकर और अपने हाथों से दरवाजे को काट डाला। ऐसे सुरवीर सरदार सीताराम थे, तब सूरजमल ने बड़ा काम किया, सीताराम की पुत्र के साथ कुंवर नवल सिंह का बचपन में ही ब्याह कर डाला। 1756 में नवल सिंह का जन्म हुआ और 62 में उनका ब्याह हो चुका। कितने साल में? 7 साल की शादी हो गई। ऐसी बात है। अब सूरजमल का स्वर्गवास होता है, वो कथा मैं आपको सुनाने को जा रहा हूं। सब कथा सुनकर आपको भी वैराग्य तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये कथा वैराग्य की ही तो है। नवल सिंह ने घर बार छोड़ दिया, इसके कारण वैराग्य नहीं हो पाएगा, मगर राज्य में जो धमाल हुई है वो देखकर तो वैराग हो ही जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी बुद्धि होती है तो, खाली है तो कोई बात नहीं है। 1763 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई की, क्योंकि ये सब जाट राजपूत लोग हिंदुस्तान पर आए हुए मुसलमान का साम्राज्य हटाना चाहते थे। गमे तेम करीने मुस्लिम साम्राज्य ने समाप्त करवो, एटले बधा ज वारा फरती दिल्ली उपर चढ़ाई करशे, शक्ति जेटली हशे एटली। सूरजमले दिल्ली उपर चढ़ाई करी, पछी एमना दीकरा जवाहरसिंहजीए पण दिल्ली उपर चढ़ाई करी, पछी नवलसिंहजी पण दिल्ली उपर चढ़ाई करवा गया। आनंदानंद स्वामी एने चढ़ाई करी। दिल्ली का साम्राज्य छोटा नहीं था, फिर भी ये लोग कितने सुरवीर होंगे, दिल्ली पर कूद पड़ते थे। देखो 1763 में दिल्ली पर चढ़ाई की, बहुत बड़ा सैन्य लेकर वो दिल्ली जा रहे थे। उस समय दिल्ली के नवाब नजुबिन दौला ने अपने कुछ आदमियों को वेश पलटा करके गुप्त षड्यंत्र रचकर सूरजमल के लश्कर में मिला दिया। मुसलमान ने हर बार धोखा दिया, दगा बहुत किया, ऐसा इतिहास कहते। सूरजमल की सेना दिल्ली के नजदीक हिंडल नदी पर पहुंची, वहां सादरा नामक एक गांव है, वहां पड़ाव डाला, रात्रि वहां पर रुकने का निश्चय किया, छावनी बावनी सब लगा दी। मुसलमान के आदमी लोग सैन्य में मिल गए थे। सूरजमल को इच्छा हुई रात्रि के समय नदी पर जरा टहलने की। सूरजमल कुछ अपने साथियों को लेकर नदी पर हिरने फिरने गए तो वहां इन लोगों ने मौका देखकर वार कर दिया और वहां सूरजमल की मृत्यु हुई। उस दिन था 25 दिसंबर 1763 ईस्वी सन। हिंडल नदी के तट पर सहारा गांव में सूरजमल की हत्या हो गई। सूरजमल के साला थे बलदेव, वो सैन्य के सेनाध्यक्ष थे, यानी के नवल सिंह जी के मामा। फिर उनका दिल टूट गया, क्योंकि खुद भरतपुर नरेश की हत्या हो गई, बाद में किसी में जौम नहीं रह सकता। फिर सैन्य लेकर वो वापस भरतपुर आए। आज भी उस स्थान पर महाराजा सूरजमल की स्मृति के सुंदर स्मारक विद्यमान है। महाराजा सूरजमल स्मारक। महाराजा सूरजमल के समय में उनके अंतिम 500 साल में राज्य का वार्षिक खर्च 60 से 65 लाख का था। सूरजमल के समय में वार्षिक खर्च दर वर्षे एवडा लोगो 8-5 लाख रुपया वापरता और वार्षिक आमदनी एटले आवक तकरीबन 1,75,00,000 जीतनी थी, एटले 2.25 करोड़ जेटली आवक हती अने 8-5 लाख रुपया लोग वापरता घर खर्चा में। उन्होंने अपने पूर्वजों के खजाने में 6 करोड़ रुपये जमा कराए थे, 6 करोड़ रुपया एना पूर्वजों खजाना में उमेरिया। આપણે નથી કહેતા કે અમે જ્યારથી કોઠારી ટ્રસ્ટી થયા ત્યારથી અમે આટલી ફિક્સ કરી, એ આ વાત છે। ઓર ઉસ સમય ભરતપુર કે ખજાને મેં 10 કરોડ રૂપિયે થે, 10 કરોડ રૂપિયે। આજ સે 200 સાલ પુરાની એ કથા, 250 સાલ પુરા। दूसरा बहुत गड़ा हुआ धन भी था, बीजू के डाटेलू धन तू एम कह, गड़ा हुआ धन एट डाटेलू। उनके पास 12,000 घोड़े थे और 15,000 सवार, 200 हाथी, 25,000 से अधिक पैदल सैनिक, 300 तोपो थी, 300 से अधिक, और उतना ही बारूद खाना तथा अन्य युद्ध का सामान था भरतपुर राज्य में। वहां राज्य परिवार का ऐसा नियम है, जिस वक्त जिस दिन राजा की मृत्यु हो जाती है उसी वक्त राज गद्दी पे किसी को बैठा देना चाहिए, किसी का राज तिलक कर देना चाहिए। बाद में ही मरा हुआ राजा का अग्निदाह होता था, ऐसा रिवाज। एक दिन भी गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। महाराजा सूरजमल की मृत्यु होने से सैन्य छिन्न भिन्न हो गया था, इसलिए सेनापति बलराम जी ससैन्य वापिस भरतपुर लौट आए। सूरजमल की पत्नी कृष्णा देवी ये बात सुनकर बड़ी दुखी हुई, जो बड़ी महारानी थी कृष्णा या किशोरी देवी महासती थी, उन्होंने ये बात सुनकर अन्न जल का त्याग किया, बहुत दुखी हुई। और भगवान की आराधना में महारानी बैठ गई, खाना पीना छोड़ दिया है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, सब मनाते हैं मगर राजमाता न बोलती है, न खाती है, न पीती है। बलराम की आराधना कृष्णा ने की है अपार, बलराम की आराधना की कृष्णा ने अपार। तब प्रसन्न हुए बलदेव जी सुन के उनका पुकार। पांच दिन हो गए तो भगवान बलदेव जी प्रसन्न हुए। पांचवें दिन प्रकट हुए, दिए निज के दर्शन, प्रेम सहित प्रभु बोल उठे सुखद मधुरे वचन। दिल ही पर चढ़ाई करो, होगा तुम्हारा विजय, रहूंगा तुम्हारी मदद में, तुम घबराना नहीं। बलराम जी ने कहा जाओ युद्ध छेड़ दो, दिल्ली पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी मदद में रहूंगा, मत घबराना। ये बात महारानी कृष्णा देवी ने अपने पुत्र को सुनाई। मगर सूरजमल की मृत्यु हुई उस दिन ही, सन 1763 और संवत 1819 में सूरजमल के बड़े पुत्र जवाहर सिंह गद्दी पर आए, उनको गद्दी दे दी, बिठा दिया। उनके मित्र इंदौर के महाराजा होलकर थे। जवाहर सिंह ने होलकर और अन्य उनके मामा थे उनके सभी के साथ बैठकर विमर्श किया और माता कृष्णा देवी ने जो भगवान ने दर्शन देकर कहा था वो बात सुनाई और दिल्ली पर चढ़ाई करने का सोच लिया। तब होलकर 25,000 मराठा सैन्य के साथ मदद में खुद आए और हरियाणा प्रांत के उनके मामा काशीराम का 15,000 सैन्य मदद में लिया और 60,000 अपना सैन्य लिया। इस तरह करीबन 1,00,000 सैनिकों के साथ जवाहर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। निकल पड़े भरतपुर से दिल्ली जाने। दिल्ली पहुंच गए और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध बहुत बड़ा हुआ, कई लोग मारे जाते थे आपस आपस। 5 दिन तक युद्ध चला। 5 ही दिन में भरतपुर राजपूतों की जीत होने लगी। मुस्लिम सैन्य हटने लगा, कटने लगा। 5 ही दिन में दिल्ली नवाब नजमुद्दौला ने सोच लिया कि अब हमारी पराजय निश्चित है। वो पराजय की कगार पर आ गया। उसने जवाहर सिंह के मित्र इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर को बुलाया। वह नवाब की दी गई लालच में आ गए। रजवाड़ा माऊ बहुत है, ऐसा बहुत होता है। हाँ, इंदौर नरेश होलकर गया। नवाबे एने कई लालच आती कि तमे गमे ते करो पण युद्ध नो विराम कराओ, समाधान कराओ। फिर नवाब ने अपने विश्वास पात्र दीवान सुमित खान के साथ उसे जवाहर सिंह के पास समाधान के लिए भेजा होलकर को, और कहलवाया कि समाधान में मैं अपनी शाहजादी की शादी जवाहर सिंह के साथ करवा दूंगा, शाहजादी दे दूंगा। युद्ध का जो भी खर्च हुआ है वो सब देने को मैं तैयार हूं, उपरांत मन चाहे रुपये भी दूंगा, लेकिन समाधान कीजिए। बाद में मित्र होलकर के कहने से जवाहर सिंह की इच्छा न होने के बावजूद भी विवश होकर समाधान करना पड़ा, क्योंकि उनका सैन्य बहुत ज्यादा साथ था। यदि जवाहर सिंह न माने तो शायद ऐसा हो सकता है होलकर अपना सैन्य लेकर वापस जाए। तो जैसे सूरजमल वापस गया और मराठा लोग मारे गए, ऐसा हो सकता है। इसलिए जवाहर सिंह को मानना पड़ा, समाधान करना पड़ा। इस तरह नवाब ने युक्तिपूर्वक समाधान करवा डाला, लेकिन जवाहर सिंह ने इस समाधान में शाहजादी लेने को मना कर दिया। मुझे शाहजादी नहीं चाहिए। और युद्ध का तमाम खर्च नवाब से लिया, सभी खर्चा ले लिया, उपरांत 6,00,000 रुपये लिए, जिसे दंड कहते हैं। 6,00,000 रुपये लिए। फिर भी संधि से असंतुष्ट जवाहर सिंह पिता का वैर लेने के लिए अष्ट धातु का दरवाजा भरतपुर ले आए। अष्ट धातु का दरवाजा वहां से उखाड़ कर भरतपुर ले आए। वो दरवाजा कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के राजा को पराजित करके वहां से उखाड़ कर लाल किले में दिल्ली पे लगाया था, चढ़ाया था वो दरवाजा, वो जवाहर सिंह उखाड़ के लेके आए भरतपुर। विजय स्मृति के रूप में जवाहर सिंह वे अष्ट धातु का दरवाजा लाया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां का झूला लेकर आया, और तीसरी चीज संगमरमर का बड़ा पलंग वगैरह वस्तु लेके भरतपुर आए थे। वह अष्ट धातु का दरवाजा हाल भी भरतपुर किले के मुख्य द्वार पर चढ़ा हुआ है। ये पलंग है उसका। वह दिल्ली दरवाजा नाम से प्रसिद्ध है आज भी भरतपुर में, दिल्ली दरवाजा। और नूरजहां का झूला तथा पत्थर का पलंग वगैरह हाल डीग राज महल में रखे हुए है। बाद में महाराजा जवाहर सिंह ने वे सब बातें आकर मां किशोरी देवी को कही। कैसा हुआ, हमारी जीत हुई वगैरह वगैरह। इतने पैसे हम लाए, कही माता ने बात स्नेह से सुनिए सूत मेरे।
कही माता ने बात स्नेह से सुनिए सूत मेरे। प्रभु जी ने साक्षात मदद की है हम सबकी। प्रभु जी ने साक्षात
कृष्ण रूप बलराम साथ रहे थे युद्ध में।
श्री कृष्ण रूप बलराम साथ रहे थे युद्ध में।
अतः हुआ ये काम यश देना भगवान को।
अतः हुआ ये काम यश देना भगवान।
हमारी जो जीत हुई ना, वो भगवान की मदद से हुई है, इसलिए विजय का सब यश भगवान को दे दो बेटा, हमको नहीं रखना चाहिए। और बेटा सुनो, अधर्मी मुसलमानों का धन हमारे राज्य भंडार में नहीं रखना चाहिए, तो क्यों हम वापस दे दे, नहीं, उसे तीर्थ स्थानों में खर्च कर डालो। ये तमाम संपत्ति मथुरा तथा गोकुल वृंदावन के तीर्थों के विकास के लिए और यात्रिकों के सुख के लिए खर्च कर डालो। माता ने ऐसी सलाह दी। धन्य माता कृष्णा को अच्छा दिया सुझाव, उसके मुताबिक चले जवाहर सिंह महाराव। ऐसा कहने वाली महारानी किशोरी देवी, ऐसी सलाह देने वाली ये कृष्णा अति होशियार थी, उदार थी, विवेकी थी, साहसी भी थी और प्रभु की दृढ़ भक्त थी। ऐसी नारी हर युग में नहीं होती है। उनका योगदान आज भी भरतपुर राज्य के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लंकित है। यह सब बात हो गई। तत्पश्चात जवाहर सिंह तथा उनके भाई रतन सिंह तथा नवल सिंह इत्यादि ने साथ मिलकर उस संपत्ति को गोकुल मथुरा वृंदावन के विकास में खर्ची। कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वहां बाग बगीचे किए, सरोवर, धर्मशाला और प्याऊ बंधाए, परब बंधाए। अनेक लोगों को दर्शन के लिए आने का मन हो ऐसे यमुना किनारे घाट बंधवाए। कला कोरनी कराई। हाल भी कई स्थल ये पुरातनी कला कोरनी के इतिहास की गवाही पूर रहे हैं। हाल भी कहीं है, सब है। जवाहर सिंह महा सुरवीर थे, उन्होंने आगरा सर करके वहां किले में रहे हुए बेगम के महल को वहां से पूरा उखाड़ कर डीग में उसी प्रकार पुनर्स्थापित किए। अब आपस पराक्रम खरा जो हाल भी मौजूद है। अगर जवाहर सिंह ज्यादा रहे होते तो भारत का चित्र कुछ और होता, मगर ज्यादा रहे नहीं। फिर उन्होंने क्या क्या जानते हो, आगरा से पूरा महल उखाड़ कर डिग में स्थापित किया, फिर आगरा को जीत लिया, फिर ऐसा ही महल वहां आगरा पे फिर बनाया। आज दो महल है, एक डिग में और आगरा में, एक साथ दो में। एटले कह छे के आज रहिया हो तो भारत नु चित्र कई जुदू जोता हो, केटलाय महल होत। परंतु ईश्वर की गति अकल होती है। क्या अकल होती है बताते। मदार खां नामक मुसलमान था, बहुत बली था। उन्होंने दगा करके उनका खून कर डाला। सूरज मल का हुआ ना मुसलमान के हाथों से, वैसा ही उनकी गादी पर आए हुए जवाहर सिंह का भी खून हो गया, दगा से हुआ। जवाहर सिंह करीबन 7 साल तक गद्दी पे रहे। तब खून हुआ।
दगाखोर दगा करते हैं, दगाखोर दगा करते हैं, जिसे नहीं है लाज, वीर सन्मुख लड़ते हैं, धन्य है उनके काज।
जो वीर होते हैं ना, वो तो सन्मुख लड़ते हैं और पीछे से वार करते हैं, वो सब दगाखोर है।
अब गद्दी किसको देनी है? राजमाता किशोरी देवी है, उन्होंने सोचा, बड़े बड़े सरदार के साथ बैठकर निर्णय किया। और कृष्णा देवी को तो पुत्र नहीं थे, इसलिए गंगा देवी के दूसरे पुत्र यानी के जवाहर सिंह जी के छोटे भाई रतन सिंह जी को भरतपुर की गद्दी पे बिठाया। अब रतन सिंह आए, रतन सिंह अब भरतपुर की गद्दी पे आए, रूपानंद गोसाई की पुत्री के साथ वो प्रेम में पड़े थे, उसी आसक्ति के कारण उनकी भी मथुरा में रूपानंद गोसाई के हाथों से ही षड्यंत्र से मृत्यु हुई। ये गोसाई एवं गोठ्यू, बहु प्रेम थी आम आमंत्रण आप्यो, मंदिर लई गया अने त्यां एमनु खून करी नाख्यु। सूरजमल, जवाहरसिंह अने रतनसिंह आ त्रणेयना गादी ऊपर आव्या पछी आ रीते खून थई गया। रतनसिंह का शासन काल करीबन 10 मास का ही माना जाता है, एटलू ज रही आएंगे। जब रतन सिंह स्वर्गवासी हुए तब उनके पुत्र केसरी सिंह सिर्फ 2 वर्ष के थे, मात्र 2 वर्ष एनो दीकरो हतो, ए नाम केहरी सिंह। उनको राज्य तिलक करके गद्दी पे बिठाया। आ लोकोनी रीत परंपरा एवी के राजा होय एनो कुंवर ज गादी आवे, नानो होय के मोटो होय, अने एमाय मोटो होय, બે ત્રણ દીકરા હોય મોટો હોય, એટલે આમને 2 વર્ષના છોકરાને તિલક કર્યું કૃષ્ણ દેવીએ, ઓર મહારાજા ઘોષિત કિયા। હવે 2 વર્ષના છોકરો રાજ શું આકે, તમે હું બધા સમજીએ। ઉસ સમય દાનશાહ નામક સરદાર થે, ઉનકે મુખ્ય પ્રધાન જિસે હમ કહેતે હૈ, વો સરદાર કો મહારાજા કે શાસન કાર્ય મેં સહકારી નિયુક્ત કિયા ગયા। तब नवल सिंह थे, मगर कृष्णा देवी को उस वक्त नवल सिंह के साथ कुछ वैमनस्य था, बहुत उत्साह संबंध नहीं था, तो नवल सिंह को नहीं नियुक्त किया। 2 साल के बच्चे को रात तिलक कर दिया और दानसिंह नामक सरदार को महाराजा के शासन कार्य में सहकारी नियुक्त कर दिया। परंतु उनकी हील चाल से महारानी किशोरी देवी को भय लगा और असंतोष रहा था, और वह सही था असंतोष, क्योंकि वो दानशाह पूरा राज हड़प कर लेने को चाहता था। लेकिन किशोरी देवी बड़ी होशियार थी, समय को उन्हें पहचान लिया, फिर समय परख कर महारानी किशोरी देवी ने सरदार दानशाह को निकाल दिया और सूरजमल से रानी कावरिया देवी की कोख से जन्मे हुए पुत्र नवल सिंह जी को भरतपुर की गद्दी संभालने को कहा। हवे नवल सिंह ने बुलाया अने कह्यु के तमे गादी संभाळी लो। राज्य की नाजुक परिस्थिति है, अब तुम्हें राज्य संभालना होगा, वरना हमारा राज्य जाएगा। नवल सिंह जी को राज्य में रुचि नहीं थी, फिर भी माता ने आग्रह किया और राज्य की परिस्थिति को देखकर अपना कर्तव्य मानकर तथा केसरी सिंह की गद्दी को कोई हड़प न ले, ऐसे आशय से उन्होंने माता किशोरी देवी को कहा, सुनिए माते, राज्य के सही उत्तराधिकारी तो भाई के पुत्र केहरी सिंह ही है, मैं गादी
नहीं संभाल सकता। गादी रतन सिंह जी के पुत्र केहरी सिंह की ही कहलाती है, उनकी ही है। आपका आग्रह है ये गादी को कोई हड़प ना ले, इसलिए मैं राज्य संभालूंगा, मगर राजा तो केसरी सिंह रहेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उन्हें राज्य सौंप दूंगा। अतः वे जब बड़े हो जाए तब तक राज्य का सभी कारोबार मैं संभालूंगा। आशा नहीं जिसे राज्य की, ऐसा कौन महान। आशा नहीं जिसे राज्य की, ऐसा कौन महान। राज्य के लिए लोक सभी रहत है पागल ज्ञान।
राज्य के लिए लोक सभी रहत है पागल ज्ञान।
आशा नहीं जिसे राज्य की, ऐसा कौन महान।
आशा नहीं जिसे राज्य की, ऐसा कौन महान।
सत्ता कोने नहीं गमती, अरे नानी मोटी जेवी तेवी, पण सत्ता जोई। हमने काई नहीं, हमने कोई खातू नहीं, हाव नरी वातू मोगरो मरडाई जाए। नानू एवं खातू दियो पचीज खावानू भावे। हावड़ा मोटा भरतपुर नी गादी एनी माता कहे छे के हवे तू संभाळी ले नवलसी, एने रस नथी। बोलो। राज्य के लिए लोक सभी रहत है पागल ज्ञान।
राज्य के लिए
पागल
सभी
सत्ता माटे
रहत है पागल ज्ञान।
महारानी किशोरी देवी भरतपुर का राजकाज भली प्रकार चले ऐसा चाहती थी, अतः पहले उनको नवल सिंह के प्रति जो थोड़ा बहुत वही मनुष्य था उसे बुला दिया और उनको रीजेंट किंग के तौर पर करीबन सन 1771 में जाहिर किया। नायब राजा इसे कहते हैं रिजल्ट किंग, अर्थात केहरी सिंह की एवजी में, गुजराती में कहो तो अवेजी में महाराजा नियुक्त किया गया नवल सिंह को। इस तरह रिजल्ट किंग के तौर पर महाराजा नवल सिंह ने समग्र राज्यकार बाहर भली भांति संभाला। बाहर की दुनिया सराहे, कहे हमको महान। अब बहुत बड़ी बात आ रही है समझने जैसी। नवल सिंह ने राज्य संभाल लिया, बहुत अच्छी तरह से भरतपुर का राज्य वे चलाते थे, सुख समृद्धि की तो कोई सीमा नहीं थी, कोई अब दुख नहीं था, सब लोग आनंद में थे, राज्य परिवार वाले और सब प्रजा लोग। बाहर से दुश्मन जब हमारे कोई नहीं रहते हैं और मानो बाहर के सभी दुश्मन लोग और विरोधी लोग हमारी सराहना करने लगते हैं, हमारे साथ विरोध सब भूल जाते हैं, हमारी शक्ति को जानकर सब हमें झुक जाते हैं और हमारी इन सभी लोगों को पहचान हो जाती है। बाद में बाहर के लोग तो कोई हमें नहीं हैरान करते, मगर तत्पश्चात भीतरी खटपट शुरू होती है हमारे ही लोगों की। बाहर की दुनिया सराहे, कहे हमको महान, तब भीतर शुरू होती है महा खटपट ज्ञान। बाकी आ लोगों में शांति नहीं एटले नहीं। पहला तो आपने ऊंचा आवा न देवा हारू दुनिया बहु मथे, गमे एम करीने तमने दबावीने राखवा, नीचे राखवा, तमारू हालवा न देवू, काबू में राखवा, वश राखवा, नड़वू चूसवा, तेम छताय तमारा में जो सामर्थ्य होय ने भगवान की कृपा होय तो तमे कोई ना दबावा रोका न रोकाओ अने बारा निकलो, जामी जाओ बधी रीते। ત્યારે તમારો વિરોધ કરનારા, તમને ગાળો દેનારા, તમને નડનારા, તમારા કાર્યમાં બાધા ડાલનારા એ બધા દુશ્મનો વિરોધીઓ પાસે તમારા ભાઈ બંધ થઈને હાથ જોડે કેમ છો, પછી વખાણ કરવા માંડે અને ખબર પડી ગઈ કે હવે હાલ બાધ્ય મેળ નહીં ખાય, વખાણીને એની પડખે ગરી જાય તો જેટલું લૂંટાય ખેંચાય એટલું ખેંચાય, બાકી આમ મેળ નહીં પડે હવે તો. પછી ભાઈ બંધીને ખેંચે, પછી બધા એ તો આપણા થઈ ગયા, હવે લાલચે તો લાલચે પણ વિરોધ તો મટી ગયો. હવે આપણે કોઈ ભય ન રહ્યો, કોઈ કનડે એવું ના રહ્યું, આપણે બધા શાંતિથી હવે બહુ મોટો આનંદ પામ્યા, સુખ પામ્યા, સમૃદ્ધિ પામ્યા, ધંધા પાણી પૈસા લીલા લહેર થઈ ગઈ, જ્યાં જાવ ત્યાં વાહ વાહ થાય. બોલો, નિંદા કરતા હતા એ વખાણવા લાગ્યા, પછી હું કાયમ એમને શાંતિ રહે એવી જ વાહ વાહ લે, દુઃખ પછી કંઈ આવે જ નહીં. વાત શું કરો છો, બહારનો વિરોધ બંધ થાય એ ભેગો અંદરથી વિરોધ શરૂ થાય. આઠ ફૂટ માઇલ કર્યો જ પડે તરત જ. એક વાત યાદ રાખજો, બહાર દુશ્મન હારા, અંદર નહી હારા. પરાયા આપણી સામે હોય, વિરોધમાં હોય, તે આપણા માટે બહુ સારું. વાળી ખબર તો પડે કે આ પારિકા છે, સાવધાન તો રહી. પણ આપણા ને આપણા આપણા વિરોધમાં જે દી હોય તે દી મારા બેટાની ખબર એ ન પડે આપણને કે હારો આપણો માણા આવું કરે આપણી અરે, પછી એ કરે. બાકી શાંતિ આ દુનિયામાં નથી, ભગવાનનું ભજન કરો. શાંતિ તો આ છે સહજાનંદમાં, કેવી મસ્ત મજાની શાંતિ.
બહાર કી દુનિયા સરા હૈ કહે હમકો મહાન, તબ ભીતર શરૂ હોતી હૈ મહા ખટપટ જ્ઞાન.
તબ ભીતર શરૂ હોતી હૈ. યહાં ભી એસા હી હુઆ, નવલસિંહ ને રાજ સંભાલ લિયા, દાનશાહ કો ભગા દિયા, વૈમનસ્ય કૃષ્ણા દેવી કો મિટ ગયા, સબ અચ્છા હો ગયા. તબ ક્યા હુઆ, રણજીત સિંહ થા, નવલસિંહ જી કા છોટા ભાઈ ચોથા, ખેત કુમારી દેવી કી કુખ સે વો જન્મા થા. નવલસિંહ કી બડી સરાહના સુનકર રણજીતસિંહ કો ભી એસા હુઆ, મેં થોડા છોટા ઇસલિયે રહ ગયા મગર ભરતપુર કી ગદ્દી મુજકો મિલતી. લ્યો પતી ગયું. બોલા ધૃતરાષ્ટ્રને નો કાયમ રહ્યું, સાલી આંખ્યો નહીં એટલે મારે ગાદી નહીં, મોટો તો હું છું, આંખ્યો નહીં એમાં મારો હું વાક ગાંધારી, મારે આંખ્યો નહીં એમાં મારો હું દોષ, મને ગાદી નહીં. એવા આંધળો ગાદીનો શોખીન, પણ કેવો શોખીન હો, સચિન તેંડુલકર ક્રિકેટ નો શોખીન, એવો શોખીન, એના શોખ નું તો કઈ માફ નહીં. રણજીતસિંહ ને ગાદીનો શોખ બહુ જાગ્યો ભાઈ સાહેબ. હા હવે હા ભાઈઓ ને ભાઈઓ, હા માં અલગ પણ બાપ એક, એટલે હગા ભાઈઓ જ કહેવાય. ગાદીની બડી તીવ્ર ઈચ્છા થી રણજીતજી કો હતા, ઉનોને ખુદને અપના સૈન બનાયા. બોલો, ઓર ભરતપુર કી ગાદી હડપ કરને કે લીએ ઉનોને લડાઈ કી. બોલો હગા ભાઈ આવ્યા. હા મામી, એક બાજુ નવલસિંહ, એક બાજુ રણજીતસિંહ. એક દફા કુંભેર પર ચડાઈ કી, કાળું ભરતપુર ન મળે તો કઈ નહીં, આ કુંભેર નો ટુકડો મળી જાય ને તો બંદા ન્યા સિંહાસન ગોઠવીને માંડે રાજી કરવા, ચાલો એ કામ કરો તેમ કરો. પણ નવલસિંહ એમ કઈ ગાજા જાય એમ નહોતા, લડી લીધું. ભાઈ રણજીતસિંહ પહોંચ્યા નહીં તો ફરી વાર પછી મોટું સૈન્ય ભેગું કરીને ભરતપુર ઉપર ચડાઈ કરી. બોલો, કુમેર બુમેર એક બાજુ, મૂળ ગાદી ભરતપુરની જ લઈ લેવી. પણ એમાં જબરું યુદ્ધ ખેલ્યા નવલસિંહ, રણજીતસિંહ હાર્યા, ભરતપુરની ગાદી મળી નહીં. ભાઈઓ ભાઈઓ, કેમ પાંડવ અને કૌરવ ભાઈઓ નતા તો બીજો કોણ બાંધવા આવે આપણી હારે ઈરાકમાંથી, ત્યાં ત્યાં બાંધે બધા. વાલા ભક્તો, દો યુદ્ધ હુઆ, પરંતુ દોનો યુદ્ધ મેં મહારાજા નવલસિંહ કા વિજય હુઆ થા. યહ ઘરેલુ યુદ્ધ કરીબન 5 સાલ તક ચલતા રહા. બોલો સ્વામી આનંદાનંદજી, આવા બધા યુદ્ધ ખેલીને આવેલા, આવો પછી સ્વામી થઈ ગયા.
5 साल 5 वर्ष जग में अति बड़ा दुख है जग में अति बड़ा दुख है भीतर की खटपट वो दुख जब आते हैं संतों वो दुख जब आते हैं होता है पतन जट इसका नाम है भीतर की खटपट आवे जो पसी कोई ये वो मानता नहीं कि नो आवे जेने खादु एने जाड़ो थायो एम जेने सत्ता समृद्धि भेगी करी त्या अंदर नी खटपट थायो कोई भी ने चाहे संप्रदाय होय के संसार होय बधे एम थाय बोलो काई न होय त्यार हव हंपीन रे પણ થોડું ઘણું ભેગું થયું એટલે હવ પછી એને પોતાનું કરવા લાગી જાય ધંધે ખટપટ ને ખોટું બોલું દગાન થોડુંક ચોરી ચોરી નોખું જમા કરવું એ બધું શરૂ જ થઈ જાય ભાઈઓમાં હંપ હોય તો ભાઈઓ વાહે વાહે રહીને કે જો ને એના છોકરાને આમ ને આપણે કાંઈ નહીં આપણે આમ ને આપણે તેમ ને રોજ ઉઠીને ભાઈ સાહેબ પંપ માર્યા કરે તો આવડો દડો કોગદીત થાય લડે 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 તો દો લડાઈ મેં રણજીત સિંહ હાર ગયે બાદ મેં રણજીત સિંહને સોચા મુજસે કામ અકેલે હાથો નહીં હો સકેગા ઇસલિયે મુજે કિસી કી મદદ લેની ચાહીએ ફિર ઉન્હોને ક્યા ક્યા સુનો અપને હે ભાઈ કે હાથો સે અપની હી ગાદી કો હડપ લેને કે લિયે રણજીત સિંહને ફિર સે 1 લાખ મરાઠાઓ કા સૈન્ય ઇકઠ્ઠા ક્યા મરાઠાઓ કા સાથ લિયા મેં તુમકો ઇતના પૈસા દુંગા આપ મેરે સાથ લડાઈ કરને કે લિયે આઈએ મુજકો ભરતપુર કા રાજ એક વાર દિલવા દીજીએ બાદ મેં તુમકો ઇતના પૈસા દુંગા હવે કાંઈક નક્કી કર્યું જશે ને કોઈ અમથી અમથું મરવા આવે તો લાખ મરાઠાઓ કા સૈન્ય ઇકઠ્ઠા કરકે ભરતપુર પર ચડાઈ કી નવલ સિંહ કા દિમાગ ઘૂમને લગા હે ક્યા હો રહા મેરા હી ભાઈ મુજ પર ચડાઈ બાર બાર ચડાઈ ક્યા કરે સામને 1 લાખ મરાઠા સૈન્ય ફિર ભી નવલસિંહ 20 થી 25 હજાર સૈનિકો કો સાથ લેકર મરાઠાઓ કા મુકાબલા કરને કે લિયે નિકલ પડા યુદ્ધ હુઆ વહ યુદ્ધ 5 દિન તક ચલા મગર નવલસિંહ કી ઇસ યુદ્ધ મેં હર પલ પરાજય હોતી જા રહી થી ક્યુંકે બહોત છોટા સૈન્ય થા अपने सैन्य मारे जा रहे थे नवल जी ने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे और भरतपुर की गद्दी हाथ में छे चली जाएंगे मुझको तो गादी का मोह नहीं है मगर मैं केहरी सिंह के लिए ये राज्य संभाल रहा हूं और माता के साथ मेरा वादा है कि मैं राज्य की सुरक्षा करूंगा केहरी सिंह जब बड़े हो जाएंगे तब उनको मैं उनका राज्य सौंप दूंगा ये तो रणजीत सिंह ले जाएगा फिर बड़े होशियार थे नवल सिंह उन्होंने सोचा ये सब जोर मराठा सैन्य की वजह से है मैं कुछ करके मराठाओं को यहां से वापस भेज दू तो रणजीत सिंह कुछ नहीं कर पाएगा फिर कुछ लागवक करके मराठा सैन्य के सरदार से नवल सिंह ने मीटिंग योजी और मीटिंग में बैठे नवल सिंह ने कहा आपको क्या चाहिए क्यों मेरे भाई के पक्ष में आकर तुम हमसे लड़ाई करते हो तुम्हारा हमारा समाधान ना हो सके उन लोगों ने कहा हो सकता है हमें राज्य नहीं चाहिए भाई हम राज्य के लिए नहीं लड़ते हमको तो पैसा चाहिए। तुम्हारे भाई ने पैसा दिया तो उनके पक्ष में आए, तुम पैसा दे दो। गौमुख तो आवाज बजाता, जिसके पल्ले में लड्डू उसके पल्ले में हम। तब नवल सिंह ने समय सूचकता का उपयोग किया और मराठाओं के साथ समाधान किया। उसी समाधान में 70 लाख रुपये देने पड़े, एटले के 70 लाख। कितना? 70 लाख रुपया मराठा ने भरतपुर राज्य ना खजाना माथी नवल सिंह ने आपवा पड़ा। एटले न पीत्यू, बोला के एटला रुपया नहीं तो एकादो प्रदेश आपो। अने पछी यमुना के पूर्ववर्ती प्रदेश मराठाओं को देना पड़े, एक प्रदेश आप दीदे टुकड़ो देवो पड़े। फिर वो लोग वापस गए। लियो आ अंदर नी खटपट नु फल, बाजू हो तो बाजो, दशे आ थाय ओलो ही दे आई दे, नुकसान नुकसान ने नुकसान। भीतर की खटपट से होते हैं नुकसान, ए जी भीतर की खटपट से होता है नुकसान, इतना नुकसान कभी भी होता नहीं है ज्ञान। अरे इतना नुकसान कभी भी होता नहीं है ज्ञान, भीतर की खटपट से होता है नुकसान। अंदर अंदर नी खटपट थी, जेटलू नुकसान थाय छे एटलू नुकसान बीजी कोई वात में थातु नथी। हवे वात सांभळवा जेवी छे, मराठाओ तो भरतपुरना खजाना में थी 70 लाख रुपियाना कोथला गाडा में चढ़ाई उपड़ा, अने यमुना नो उत्तरवर्ती प्रदेश मिली गयो, एटले पोतानुं सैन्य बन्ने बधुं लईने उपड़ा। एटले रणजीत सिंह चमक्या, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं, बोला तो उपड़िया। रणजीत सिंह वाहे गया, मराठा के सरदार को मिले और कहा, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं। मराठा सरदार ने कहा, जो दिखाई देता है वही, हाँ अरे जो देखते हो वही दिखाई देता है, वही देखते हो। अरे आप तो मुझे राज्य दिलाने आए थे ना, और अब कहां जा रहे हो। तब उसने रणजीत सिंह का अपमान करके कटाक्ष में कहा, मराठा सरदार ने, राज्य तो तुम्हारा ही है ना, जाओ ले लो अपने भाई से, हमारे पास क्यों आए हो, जाओ जाओ। आओ कहीं न्याय की मिले, बोलो गाड़ा रथ को। अने आ वक्ते जे रणजीत सिंह ने आघात लाग्यो, गाभा काटी नाखे लगे तीजा युद्ध में। अपने ही अपने होते हैं आखिर में, अपने ही अपने होते हैं दूसरा नहीं ज्ञान। अपनों को दुख न दीजिए, अपनों को दुख न दीजिए, दूजे की लेके आ, जे अपना हो ये छेले अपना हो, माटे बीजा नु बल लई अपना मानसो ने क्यारे दुख देवू नहीं। मां बाप स्मशान में ईवड़ाई आववाना होय, अपनी छेली मोटर कार ने खभो ई देवाना होय। परायो कोण आवे, अपने ही अपने होते हैं दूसरा नहीं ज्ञान,
अपने ही अपने होते हैं दूसरा नहीं ज्ञान।
अपनों को दुख न दीजे,
अपनों को दुख न दीजे,
दूजे किले के आन,
दूजे किले के आन।
अपने ही अपने होते हैं दूसरा नहीं ज्ञान,
अपने ही अपने होते हैं
राज तो तुम्हारा ही है ना, जाओ ले लो, हमारे पीछे क्यों घूमते हो? एम कह रणजीत सिंह नो अपमान करो, मोटू आवड़े थी गया, ऊंडो उतरी गया, हृदय में बहुत दुख थी। एने हाव चोखू देखाई गयो कि हमने बे भाई ने लूटा, हम भाइयों के बीच की बात, हम दोनों भाइयों की बीच की बात में साला दुश्मन को लाभ हुआ है, तेरे की दुश्मन को लाभ हुआ, यह ठीक नहीं हुआ, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हुआ। हवे बदी हम जड़े आवी गए, हवे करूं हूं। पछी एक दिवस आ बदा गोवर्धन नाथ ने बहु माने, એટલે સાત કોષમાં ત્યાં ગોવર્ધન પર્વત છે ને, એમને બહુ માને, અવારનવાર ત્યાં દર્શને જાય, ત્યાં રોકાય, ભજન કરે, સેવા પૂજા દાન ધર્માદા કરે। તો એકવાર નવલસિંહજી ગોવર્ધન પર્વતમાં ગયા હતા, પછી રણજીતસિંહે કહેવડાવ્યું કે ભાઈ તમારી મરજી હોય તો મારે મળવું છે ધાર્મિક સ્થાન ને મંદિર, ત્યાં બેની બેઠક ગોઠવાણી। નવલસિંહ કે પાસ ગોવર્ધન મેં ઉનકી પાસ જાકર ફિર રણજીતસિંહ શરણ હુએ, શરણે થઈ ગયા ઓર માફી માંગી કે મેને બહોત ભૂલ કી। આ રીતે બેયનું સમાધાન થયું। લ્યો એસ તરહ દોનો ભાઈ કે બીચ સમાધાન હોને સે ઘરેલુ યુદ્ધ કી સમાપ્તિ હોઈ। આ ઘર ઘરાવ યુદ્ધ હેઠું બેઠું ટૂંકમાં, હવે ઘરનું હેઠું બેહદ પાછું પડખી જ ઊભું થાય, એ તો એમ જ હોય, પાણી પડે ના ખડ ઉગે જ, સમજાણું, એ તો હવે લાદી હોય તો ન ઉગે, બાકી ઉગે જ। જબ સમજ આતી હૈ તબ હોતા હૈ સમાધાન, જબ સમજ આતી હૈ 60 વર્ષે 70 વર્ષે 100 વર્ષે મરી ગયા પછી, જબ સમજ આતી હૈ તબ હોતા હૈ સમાધાન, બે સમજ નહીં માનતે સમજે વોહી મહાન, જે સમજે ઈ જ મહાન। સમજો ભાઈ, ભીતર ભીતર સમજ જાય, દોનો ભીતર ભીતર સબ સમજ જાય, અરી કો ન મિલે લાભ તો દુશ્મન ને કાય લાભ ન મળે, વરના દુશ્મનો કો હી બહુત હી હોગા લાભ। જો અંદર અંદર સમજી જાઓ ને સમાધાન કરી લો, એકબીજાને સહી લો, ખમી લો, થોડો ગહારો પણ, તો દુશ્મનો નો લાભ ન થાય, નહીતર દુશ્મન જ ફાવે એમ સમજી લેજો। આ દુનિયામાં વાંદરા ભાઈ ના જેવા ન્યાય કરી દે બધા, ઓલી બિલાડીઓ બાજીને વાંદરે ન્યાય ન કર્યો, આપણે ભણતા હતા ત્યારે જોવો ને પાઠ આવતો હતો, મારો બેટો એમ કરીને બધો રોટલો ખાઈ ગયો, બે બિલાડીઓની પૂછડીઓ હેલતી રહી ને ડોળા ટકડ વકડ થઈ ગયા, લે ખાઈ લે લે ખાઈ લે, ઓલો હુકા હુકા કરી ચડી ગયો ઉભે, હે તેરી કી, આવા નવા ન્યાય કરી દે આપણા ઘણા બિચારા ભોળા માણા ને આ ઉલ્લુ બહુ બનાવે છે પાજી માણસો। ભરતપુર રાજવંશીઓ કો ગિરિરાજ ગોવર્ધન કે પ્રતિ પ્રારંભ સે હી અગાધ શ્રદ્ધા થી, બદનસિંહ સૂરજમલ વગેરે વગેરે મહારાજા અપની કઠિન પરિસ્થિતિ મેં ભી ગોવર્ધન નાથ કી આરાધના કભી નહીં ભૂલે, કભી ભી નહીં ભૂલે થે। ઉનમેં ભી મહારાજા નવલસિંહ તો પ્રથમ સે હી ભક્ત હૃદય કે ઓર ઉદાર દિલ કે થે, જનની જણ તો ભક્ત જણ કા દાતા કા સુરવીર, જેમ રાજ્ય એમ અમે બધા કલાકારો ખીલી, હા જો 12 વાગી ગયો પછી મજા જોવો આપડી। જનની જણ તો ભક્ત જણ છે એને કા દાતા કા સુરવીર, નહીતર એમ નામ વાંદણી રહેજે હિંમત ગુમાવીશ તારો નૂર, જેવા તેવા ભરદા કરદા ઉભા કરીને વસ્તી વધારો કરી માં ઉકરડા નાખવા ક્યાં આવે જગ્યા નથી, એવા ને એવા ખીજડા ના ઠૂઠા જેવા જ્યાં હોય ને રખડાવી મેલો, ઠીક છે, આ આપણો કાઠિયાવાડી દોહરો છે. અને મેં વળી એક નવો બનાવ્યો કાવરિયા દેવી માટે. જ્ઞાન ભક્તિ મે રત રહે, હે જ્ઞાન ભક્તિ મે રત રહે, રહી કે નિર્બંધન ઉનકો પ્રિય થા હી નહી, સત્તા સ્ત્રી માન ધન. આવે છે મને જે હું કહેવા માંગુ છું. જ્ઞાન ભક્તિમાં નવલસિંહ હંમેશાને માટે ડૂબ્યા ડૂબ્યા રહે છે. રાજ્યાદિકનું એને બંધન નથી, કેમ જે એમને સત્તા સ્ત્રી માન ધન વગેરે વગેરે કંઈ પ્રિય નહોતું. ભાગ્યશાળી હતા, ધામના મુક્ત હતા, ભગવાનમાં જેત હતું. વે જબ ગદ્દી પર બેઠે ઉસ સમય હિ પંડિત ભોલાનાથ શુક્લ કે પાસ ખુદ કો પાઠ કરને કે લીએ સન 1772 મેં સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવત કા હિન્દી મેં અનુવાદ કરવાયા. આખા ભાગવતનો હિન્દી અનુવાદ કરાયો પોતાનો પાઠ કરવા નવલસિંહ ગાદીએ બેઠા મેં. વાહ, રોજ ઉસકા પૂજા પાઠ કરતે થે, હર નૂતન વર્ષ કે પ્રારંભ મેં પિતા સૂરજમલ કી ભાતિ હિ યમુના કિનારે દીપદાન કરતે થે, બ્રાહ્મણો કો ભોજન કરાતે થે, સાધુ સંતો કો ભી જમાડતે થે, હા દાન દક્ષિણા દેતે થે. ભક્ત સુરવીર દાતા નવલસિંહ સાક્ષાત, એસા સુત પ્રગટ કિયા ધન્ય કાવરિયા માત. યે બાત મેં કહ રહા હું. કોકને દીકરો થાય તો ભગત જ હોય, પછી સુરવીર નો હોય દાતાર નો હોય. કોકને દીકરો થાય તે દાતાર જ હોય, પછી ભગત નો હોય સુરવીર નો હોય. કોકનો દીકરો સુરવીર હોય, ભગત નો હોય દાતાર નો હોય. પણ માં કાવરિયા દેવીએ જેને જન્મ આપ્યો એ નવલસિંહ સુરવીર પણ હતા, ભગત પણ હતા અને દાતાર પણ હતા. ત્રણેય ગુણો એમાં હતા. બોલો, માટે માતા કાવરિયાને કોટી કોટી વંદન. નવલસિંહ ભક્ત હૃદય કે થે, ધર્મ પ્રેમી થે ઓર પ્રજા પાલક ભી થે, સ્વભાવ સે અતિ ઉદાર ઓર સબકે પ્રતિ મૈત્રી પૂર્ણ વ્યવહાર રખને વાલે થે, ઇસલિયે ભરતપુર કી તમામ પ્રજા ઉનકો બહોત ચાહતી થી. સદગુણ વાલે કો સબ લોગ ચાહતે હૈ, ફિર ભી વે દિન પ્રતિદિન વિશેષ ઈશ્વર ભક્તિ પરાયણ રહેતે થે, સબ લોગ બહોત પ્યાર દેતે થે, ફિર ભી અહંકાર કભી નહીં આતે થે ઉનકે દિલ મેં. માતા કિશોરી દેવી તથા કાવરિયા દેવી કે કહેને સે ઉન્હોને ભરતપુર મેં સુંદર કલા કોરની સે યુક્ત લક્ષ્મણ મંદિર કા નિર્માણ કરવાયા. માતાને કહા એક લક્ષ્મણ મંદિર બનવાઓ, મસ્ત મજાનું. દેખો લક્ષ્મણ મંદિર ભરતપુર આનંદાનંદ સ્વામીનું બનાવેલું. કોરની દેખો, કોરની હા કલા કલાકૃતિ દેખો, મસ્ત પથ્થરકાય. ये आनंदानंद जी का बनाया हुआ है भरतपुर में. हम जानते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ आकर अहमदाबाद में भरूच में जैतलपुर में मंदिर बनवाया है, मगर उन्होंने तो वहां भी मंदिर बनवाया तथा भरतपुर के किले के अंदर एक सुंदर बिहारी लाल जी का मंदिर करवाया है. ये बिहारी लाल जी का मंदिर यह भी नवलसिंह महाराजा ने करवाया. यह मंदिर भी वहां बहुत प्रसिद्ध है और अनेक श्रद्धालु लोग वहां नित्य दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रभु प्रीति बढ़ा रहे हैं. तदुपरांत माता किशोरी देवी को रहने के लिए एक अनुपम महल बनवाया. ये माता जी को रहने के लिए किशोरी देवी के लिए महल बनवाया नवलसिंह जी ने, वो भी विद्यमान है हाल. जैसे कि आगरा में हंस महल बनाया, एक आगरा में हंस महल बनाया वो भी विद्यमान है. ये आगरा का हंस महल है, आनंदानंद जी ने बनवाया. और पुष्कर में जवाहर सिंह घाट बनवाए, ये पत्थरों का घाट है पुष्कर में, जवाहर सिंह घाट आनंदानंद स्वामी का बनाया हुआ. जानते थे हम सब ये बात, ये बात. तथा गोवर्धन में कला कोरनी से युक्त मानस गंगा मंदिर बनवाया, गोवर्धन पर्वत में ये मानस गंगा मंदिर, ये भी नवलसिंह जी ने बनवाया. और सुंदर राजमहलों का निर्माण किया था, राजमहलों भी बनाए. ये राजमहल नवलसिंह का बनाया हुआ. सूरजमल ने तो बहुत बनाए, मगर नवलसिंह ने अपने राज्य काल में ऐसा काम बहुत अच्छा अच्छा किया. जब राज परिवार के लोग वहां जाते थे गोवर्धन पर्वत में, तब इन महलों में ठहरते थे। ये सब महल भी आज विद्यमान है। तदुपरांत सभी भरतवंशीय महाराजा गोवर्धन नाथ की पैदल परिक्रमा में जाते थे। इसका रास्ता बहुत लंबा है, करीबन 7 कोश यानी कि 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का रास्ता। इसलिए वे जहां जहां विश्राम लेते थे राजा महाराजा वो परिक्रमा में, तहां तहां उन स्थलों पर बैठने के लिए नवल सिंह जी ने छत्रिया बनवाई थी विश्रांति के लिए। ऐसी ऐसी महाराजा लोग विश्रांति लेते थे। वे छत्रिया भी आल गोवर्धन नाथ की परिक्रमा में विद्यमान है। कोई राजा रहा नहीं तो घास की बारी आ गई मेरे भाई। ऐसी बात है। शिल्प कला में शिरोमणि नवल सिंह महाराज, शिल्प कला में शिरोमणि नवल सिंह महाराज, बने आनंदानंद पीछे किए थे ऐसे काज, वो ही बने आनंदानंद पीछे किए थे ऐसे ही काज। संप्रदाय में सामाजिक आध्यात्मिक दोनों में थे निष्णात, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों में थे निष्णात, नवल सिंह महाराज की ज्ञान क्या कहे बात। ये तो मुंह छोटा और बड़ी बात ऐसी बात हुई ना, इसलिए मैं आगे आज कुछ नहीं बोलूंगा, कल आओ। कल की जो बातें हैं ना सुन के आप दंग रह जाओगे। आज मैं यहाँ कथा समाप्त करता हूँ। सबको मेरा जय स्वामीनारायण।